नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन आर्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मैक्सवेल मॉड्स की पुस्तक साइको साइबरनेटिक्स आत्मविकास साहित्य की एक प्रभावशाली कृति है। मूलतः प्लास्टिक सर्जन रहे मॉड्स ने देखा कि बाहरी रूप में सफल परिवर्तन के बाद भी अनेक लोग स्वयं को वैसा ही सीमित, अस्वीकारी या असफल मानते रहते हैं। इसी अवलोकन से पुस्तक का केंद्रीय विचार उभरता है। व्यक्ति की आत्म छवि उसके व्यवहार, अपेक्षाओं और लक्ष्यों की दिशा को गहराई से प्रभावित करती है। साइको साइबरनेटिक्स में मन को लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन देने वाली प्रणाली के रूप में समझाया गया है। पुस्तक आत्म छवि को बदलने के लिए कल्पना, मानसिक पूर्वाभ्यास, विश्राम, लक्ष्य की स्पष्टता और गलतियों के प्रति अधिक रचनात्मक दृष्टि जैसे अभ्यास सुझाती है। यह अद्यतन और संशोधित संस्करण मॉड्स के मूल विचारों को समकालीन पाठक के लिए प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य केवल उपलब्धि बढ़ाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को भय, आत्मसंदेह और पुराने मानसिक निष्कर्षों से मुक्त होकर अधिक संतुलित ढंग से कार्य करने में सहायता देना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, आत्म छवि को व्यवहार और उपलब्धि का आंतरिक खाका मानना। पुस्तक का सबसे विशिष्ट सिद्धांत यह है कि व्यक्ति अपने बारे में जो स्थायी मानसिक धारणा रखता है, वही उसकी आत्म छवि है। मॉड्स के अनुसार, लोग केवल बाहरी परिस्थितियों या इच्छा शक्ति के आधार पर कार्य नहीं करते, वे प्रायः उस पहचान के अनुरूप व्यवहार करते हैं जिसे वे भीतर से सच मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सामाजिक रूप से अयोग्य, दुर्भाग्यशाली या असफल मानता है, तो वह अवसर मिलने पर भी संकोच, टालमटोल या आत्मरक्षा के माध्यम से उसी निष्कर्ष को पुष्ट कर सकता है। इसके विपरीत, सकारात्मक आत्म छवि का अर्थ कृत्रिम श्रेष्ठता नहीं है। इसका अर्थ अपनी क्षमता, सीमाओं और मानवीय मूल्य को अपेक्षाकृत यथार्थ तथा स्वीकारपूर्ण ढंग से देखना है। मॉड्स का तर्क है कि केवल बाहरी उपलब्धियां आत्म छवि को स्वतः नहीं बदलती, क्योंकि व्यक्ति नई उपलब्धि की व्याख्या भी पुराने विश्वासों के अनुसार कर सकता है। इसलिए पुस्तक उपलब्धि के पीछे काम कर रही पहचान पर ध्यान देती है। यह विचार पाठक को बार बार असफल होने पर केवल अनुशासन की कमी खोजने के बजाय अपने आत्मवर्णन, आंतरिक भाषा और अपेक्षाओं की जांच करने को कहता है। इसकी उपयोगिता इस बात में है कि यह व्यवहार को अलग अलग घटनाओं का परिणाम मानने के बजाय एक व्यापक मानसिक ढांचे से जोड़ता है। दूसरा, लक्ष्य निर्देशित तंत्र के रूप में मन की साइबरनेटिक व्याख्या। साइको साइबरनेटिक्स नाम में साइबरनेटिक्स का आशय नियंत्रण और दिशा निर्देशन की उस प्रक्रिया से है जिसमें कोई तंत्र लक्ष्य, प्रतिक्रिया और सुधार के आधार पर मार्ग बदलता है। मॉड्स मनुष्य के कार्य व्यवहार को इसी प्रकार के लक्ष्य निर्देशित तंत्र के रूप में समझाते हैं। जब लक्ष्य अस्पष्ट होता है तो ध्यान बिखर सकता है और निर्णय असंगत हो सकते हैं। जब वांछित परिणाम पर्याप्त स्पष्ट हो तब व्यक्ति अनुभवों से सीखकर अपनी दिशा सुधार सकता है। इस विचार का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि लक्ष्य केवल इच्छा सूची नहीं होना चाहिए, उसे ऐसी दिशा देनी चाहिए जिसके आधार पर व्यक्ति वर्तमान प्रतिक्रिया को देख सके और अगला उपयोगी कदम चुन सके। मॉड्स बार बार यह भी संकेत देते हैं कि अत्यधिक सचेत नियंत्रण प्रदर्शन में बाधा बन सकता है। कौशल सीखते समय अभ्यास जरूरी है, लेकिन कार्य करते समय हर छोटे कदम को डर के साथ नियंत्रित करने के बजाय प्रशिक्षित क्षमता को काम करने देना उपयोगी है। यह दृष्टि गलती को चरित्र की अंतिम विफलता नहीं बल्कि दिशा सुधार के लिए सूचना मानती है। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा और प्रमाण मानक मॉड्स के समय से विकसित हुए हैं, लक्ष्य, प्रतिक्रिया और समायोजन का यह व्यावहारिक ढांचा आज भी सीखने, खेल, संवाद और पेशेवर कार्य में समझने योग्य है। तीसरा, कल्पना और मानसिक पूर्वाभ्यास से नई प्रतिक्रिया का अभ्यास। मॉड्स आत्म छवि में बदलाव के लिए केवल सकारात्मक कथन दोहराने पर निर्भर नहीं रहते, वे कल्पना और मानसिक पूर्वाभ्यास को महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। विचार यह है कि व्यक्ति किसी अपेक्षित परिस्थिति में स्वयं को अधिक सक्षम, शांत और उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए बार बार देखे। उदाहरण के लिए, कठिन बातचीत, सार्वजनिक प्रस्तुति या किसी कौशल के अभ्यास से पहले व्यक्ति वांछित व्यवहार की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बना सकता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भविष्य की गारंटी देना नहीं, बल्कि भय से बनी पुरानी मानसिक तस्वीर के स्थान पर अधिक उपयोगी प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ाना है। पुस्तक में भावनात्मक अनुभव का भी महत्व है। केवल दृश्य की कल्पना पर्याप्त नहीं मानी जाती, व्यक्ति को उस स्थिति में संयम, स्वीकार्यता और सक्षम कार्रवाई की अनुभूति से जोड़ने का प्रयास करना होता है। मानसिक पूर्वाभ्यास वास्तविक अभ्यास का विकल्प नहीं है। मॉड्स की पद्धति को व्यावहारिक बनाने के लिए इसे छोटे कार्यों, प्रतिक्रिया लेने और दोहराव के साथ जोड़ना आवश्यक है, अन्यथा कल्पना निष्क्रिय पलायन बन सकती है। पुस्तक का उपयोगी योगदान यह है कि वह बताती है कि प्रदर्शन से पहले मन अक्सर असफलता का पूर्वाभ्यास भी करता है। इसलिए मानसिक अभ्यास का प्रश्न केवल प्रेरणा का नहीं, उस आंतरिक दृश्य को चुनने का है जो व्यवहार को दिशा देता है। चौथा, विश्राम। स्वचालितता और अत्यधिक आत्मनिगरानी से मुक्ति। पुस्तक का एक कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष तनाव और अत्यधिक आत्मनिगरानी पर उसका विचार है। मार्स के अनुसार व्यक्ति तब अधिक सहज और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है जब वह हर शब्द, चाल या संभावित परिणाम को नियंत्रित करने की बेचैनी में ना फंसे। यह विशेष रूप से उन स्थितियों में प्रासंगिक है जहां कौशल का पर्याप्त अभ्यास हो चुका हो, जैसे संवाद, खेल, लेखन या प्रस्तुति। अत्यधिक चिंता ध्यान को वर्तमान कार्य से हटाकर इस प्रश्न में बांध देती है कि कहीं गलती ना हो जाए, परिणाम स्वरूप स्वाभाविक प्रतिक्रिया बाधित हो सकती है। मार्ट्स विश्राम को निष्क्रिय आलस्य नहीं बल्कि अनावश्यक मानसिक तनाव कम करने की विधि के रूप में रखते हैं। विश्राम के साथ व्यक्ति अपनी कल्पना को अधिक स्पष्टता से उपयोग कर सकता है और पुराने भय आधारित निष्कर्षों से कुछ दूरी बना सकता है। यह दृष्टिकोण परिणाम के प्रति उदासीन होने की सलाह नहीं देता बल्कि तैयारी के चरण और प्रदर्शन के चरण में अंतर करता है। तैयारी के दौरान योजना, आकलन और सुधार आवश्यक है, पर निर्णय के बाद निरंतर आशंका में डूबे रहना उपयोगी कार्रवाई को कमजोर करता है। इसलिए पुस्तक प्रक्रिया पर ध्यान, वर्तमान में उपस्थित रहने और प्रशिक्षित क्षमता पर भरोसे को आत्म छवि सुधार के व्यावहारिक परिणामों से जोड़ती है। मंत्र में असफलता, अपराध बोध और अतीत के प्रति लचनात्मक मानसिक दृष्टि, मार्ग सफलता की चर्चा करते हुए असफलता, शर्म और पुराने अनुभवों के मानसिक प्रभाव को भी केंद्रीय स्थान देते हैं। पुस्तक का तर्क है कि व्यक्ति अक्सर किसी एक गलती, अस्वीकृति या कठिन अनुभव को अपनी स्थायी पहचान का प्रमाण बना लेता है, फिर वही निष्कर्ष भविष्य के प्रयासों में भय और परिहार का कारण बनता है। साइकोसाइबरनेटिक्स इस चक्र को तोड़ने के लिए गलतियों को सीखने की प्रतिक्रिया के रूप में देखने का आग्रह करती है। इसका अर्थ गलती के परिणामों को नकारना नहीं है बल्कि व्यक्ति को घटना और अपने पूरे मूल्यांकन के बीच भेद करना सीखना है। पुस्तक क्षमा और अतीत से मानसिक मुक्ति पर भी बल देती है क्योंकि निरंतर आक्रोश या आत्मदोष वर्तमान ऊर्जा को पुराने संघर्षों में बांधे रख सकता है। मार्स की भाषा में खुशी को भविष्य की किसी उपलब्धि के बाद मिलने वाला पुरस्कार मानने के बजाय वर्तमान अभ्यास और दृष्टिकोण का विषय माना गया है। यह बिंदु पुस्तक को केवल लक्ष्य प्राप्ति की पद्धति से अलग बनाता है, फिर भी इस विचार को सावधानी से पढ़ना चाहिए। गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, आघात या अवसाद को केवल आत्म छवि बदलने के अभ्यास से हल मानना उचित नहीं होगा। ऐसे मामलों में प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता आवश्यक हो सकती है। निष्कर्ष में, साइकोसाइबरनेटिक्स उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो बार बार लक्ष्य बनाने के बावजूद आत्मसंदेह, प्रदर्शन भय, टालमटोल या नकारात्मक आत्मवर्णन से जूझते हैं। यह विशेष रूप से प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों, पेशेवरों, उद्यमियों और उन लोगों को विचार दे सकती है जिन्हें समझना है कि तैयारी के बाद भी व्यवहार अक्सर इच्छाओं के अनुरूप क्यों नहीं होता। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ इसके अभ्यासों में है। स्पष्ट लक्ष्य चित्र बनाना, वांछित व्यवहार का मानसिक पूर्वाभ्यास करना, विश्राम से अनावश्यक तनाव घटाना और गलती को दिशा सुधार की सूचना की तरह देखना। बौद्धिक स्तर पर इसकी खासियत आत्म छवि को व्यक्तित्व की सजावटी धारणा नहीं बल्कि अपेक्षाओं और व्यवहार के संचालनकारी ढांचे के रूप में रखना है। अनेक आधुनिक आत्म सहायता पुस्तकें आदतों, उत्पादकता या केवल सकारात्मक सोच पर केंद्रित रहती है। मार्स की पुस्तक इनसे अलग इसलिए दिखाई देती है कि वह पूछती है कि व्यक्ति स्वयं को किस प्रकार का इंसान मानता है और यह मान्यता उसके लक्ष्य तंत्र को कैसे प्रभावित करती है। फिर भी पाठक को इसके कुछ दावों को अपने समय की लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक भाषा के संदर्भ में पढ़ना चाहिए, न कि हर स्थिति के लिए वैज्ञानिक रूप से पूर्ण व्याख्या मानना चाहिए। वास्तविक परिवर्तन के लिए कल्पना के साथ कौशल अभ्यास, व्यवहारिक कदम, सामाजिक समर्थन और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सहायता भी जरूरी है। इस संतुलित दृष्टि के साथ पढ़ने पर यह पुस्तक आत्मधारणा और कार्रवाई के संबंध पर एक उपयोगी, ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली मार्गदर्शक बनी रहती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मैक्सवेल मार्स एमना DFICS, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।